रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। वर्तमान परिस्थिति में संयमित और एकताबद्ध होकर आगे बढ़ना आवश्यक है, प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने दी जोर। नेपाली कांग्रेस के दोनों पक्ष आधिकारिकता के लिए पहुंचे निर्वाचन आयोग में। सुनसरी के घोकरा स्थित हुलाकी राजमार्ग में ट्रक दुर्घटनाग्रस्त, 5 लोगों की हुई मौत। और ईरान में बिगड़े हालात, भारतीयों की होगी वतन वापसी, भारत सरकार ने जारी की एडवाइजरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने कहा कि थारू समुदाय के मौलिक सांस्कृतिक, भाषा और पहचान के संरक्षण तथा प्रवर्धन में सरकार सदैव प्रतिबद्ध है। आज थारू कल्याणकारिणी सभा लगायत विभिन्न संघ संस्थाओं ने संयुक्त रूप में काठमांडू के टूरीखेल में आयोजित थारू राष्ट्रीय माघी महोत्सव 2082 के उद्घाटन सत्र में संबोधन करते हुए प्रधानमंत्री कार्की ने कहा कि थारू समुदाय का विशेष पर्व माघी जैसे पर्व से समाज में शांति, सहिष्णुता, सद्भाव और राष्ट्रीय एकता कायम करने में सहयोग मिलता है। प्रधानमंत्री कार्की ने कहा कि वर्तमान विशिष्ट परिस्थिति में हम लोग और संयमित और एकताबद्ध होकर आगे बढ़ना आवश्यक है। आज पूरे देश में माघी संक्रांति पर्व मनाया गया है। सूर्य के धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करने वाली संक्रांति होने के कारण माघ एक गते को मकर अथवा माघी संक्रांति कहा जाता है। आज के दिन को थारू समुदाय माघी पर्व के रूप में भी मनाता है। माघ एक से उत्तरायण की शुरुआत होती है, जिसके बाद दिन लंबे और रातें छोटी होने लगती है। उत्तरायण आरंभ होने के दिन स्नान, जप, तप, ध्यान, साधना और दान को पुण्यदायक माना जाता है। इसी कारण आज के दिन देवघाट, त्रिशूली, काली गंडकी, बागमती, इंद्रावती, त्रिवेणी, रीडी आदि स्थानों पर माघ स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखी जाती है। इसी तरह थारू बस्तियों में माघी पर्व का उल्लास देखने को मिल रहा है। थारू समुदाय इसे नए वर्ष के रूप में मनाता है, जिसके कारण इस समय गांव-गांव में खुशियों का माहौल बना हुआ है। माघी के अवसर पर थारू महिलाएं चावल के आटे से बने पारंपरिक व्यंजन, ढिकरी, रोटी और मछली के विभिन्न व्यंजन बनाने में व्यस्त है। गांव के मुखिया के घर एकत्र होकर वर्ष भर की योजनाएं बनाना और सामूहिक रूप से पर्व मनाना थारू समुदाय की परंपरा है। विशेष महाधिवेशन से निर्वाचित नेपाली कांग्रेस की केंद्रीय समिति की आज हुई पहली बैठक में पार्टी अध्यक्ष गगन कुमार थापा के संयोजकत्व में घोषणा पत्र लेखन समिति का गठन किया गया। ललितपुर के कुपंडोल में हुई बैठक में आगामी चुनाव के लिए घोषणा पत्र लेखन समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। यह जानकारी प्रवक्ता देवराज चालीसे ने दी। इसी तरह बैठक ने उपाध्यक्ष विश्व प्रकाश शर्मा के संयोजकत्व में निर्वाचन परिचालन समिति गठित करने का भी निर्णय किया। बैठक में विशेष महाधिवेशन से पार्टी का नया नेतृत्व चुने जाने के बाद निर्वाचन आयोग में दर्ज अभिलेखों को अद्यावधिक करने का निर्णय भी लिया गया। ये जानकारी प्रवक्ता चालीसे ने दी। इसी बीच बीती रात संपन्न विशेष महाधिवेशन के दस्तावेज अध्ययन गगन कुमार थापा ने निर्वाचन आयोग में जमा कराए। अध्यक्ष थापा सहित कांग्रेस के पदाधिकारी निर्वाचन आयोग पहुंचे और विशेष महाधिवेशन से संबंधित जानकारी सहित दस्तावेज कार्यवाहक मुख्य निर्वाचन आयुक्त राम प्रसाद भंडारी को सौंपे। आयोग में पत्रकारों से बातचीत करते हुए अध्यक्ष थापा ने दावा किया कि उन्होंने विधान के अनुसार ही विशेष अधिवेशन किया है। दूसरी ओर कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष पूर्ण बहादुर खड़का की अध्यक्षता में कल हुई केंद्रीय कार्य समिति की बैठक ने पार्टी विधान का उल्लंघन करते हुए कार्य करने का आरोप लगाते हुए महामंत्री द्वय गगन कुमार थापा और विश्व प्रकाश शर्मा तथा सह महामंत्री फरमुल्ला मंसूर को पार्टी से निष्कासित कर दिया। इसके बाद कांग्रेस का विवाद चरम पर पहुंच गया है और फिलहाल दोनों पक्ष आधिकारिकता के लिए निर्वाचन आयोग में पहुंचे हैं। राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल ने मुल्क को निकास देने के लिए आगामी फागुन 21 गते के लिए तय हुए प्रतिनिधि सभा सदस्य के निर्वाचन को सफल करने का आग्रह किया है। आज बागलुंग के बलेवा स्थित त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालय ने विद्यालय परिसर में आयोजन किए हीरक महोत्सव में उन्होंने परिवर्तित संदर्भ में नवपुस्ता मात्र न होकर सभी नेपाली के चाहना अनुसार सुरक्षित भविष्य और शांति, सुशासन, विकास और समृद्धि का जन आकांक्षा पूरा करने के दायित्व के लिए निर्वाचन को सफल बनाने का आग्रह किया है। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने शहीद के बलिदान और परिवर्तनकारी जनता के आदर्श प्रति कर्तव्यनिष्ठ होकर निडरता के साथ लगने का आग्रह किया है। 22वें पिस्कर शहीद स्मृति दिवस तथा सरेस नेपाल द्वारा लिखित जेल भित्र के संघर्ष पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में अध्यक्ष ओली ने लोकतांत्रिक आंदोलन के दौरान पिस्कर कांड एक ऐतिहासिक तथा वीरतापूर्ण घटना होने के स्मरण करते हुए राष्ट्रीय स्वाधीनता और समृद्धि के लिए संघर्ष के उतार चढ़ाव से न डरकर निर्भयता के साथ आगे बढ़ने का आग्रह किया। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन,
भाग्यवानी बाबू, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजू।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजू।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् भाउजू।
ओए, वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
त पनि एनटीसी को सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटीसी को डे प्याक लिन *14## डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी ने निर्वाचन प्रबंधन में सूचना प्रविधि के प्रयोग के प्रति आयोग की संवेदनशीलता बताई है। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन 2082 के संदर्भ में आयोग के कंप्यूटर ऑपरेटरों के लिए आज से काठमांडू में शुरू हुए एकीकृत निर्वाचन प्रबंधन सूचना प्रणाली एवं साइबर सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण का उद्घाटन करते हुए कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारी ने कहा कि सूचना प्रविधि के माध्यम से पिछले भाद्र 23 और 24 को हुए विद्रोह के बाद आगामी फागुन 21 को प्रतिनिधि सभा के निर्वाचन की तिथि निर्धारित की गई है, इसलिए इस निर्वाचन में तकनीक के उपयोग के प्रति आयोग संवेदनशील है। विराटनगर से मार्बल लेकर राजबिरा जा रहा एक ट्रक आज सुबह सुनसरी जिले के घोकराहा नरसिंह गांव पालिका अंतर्गत हुलाकी राजमार्ग पर पलटने से 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हो गए। मृतकों में सुनसरी के बरजू वार्ड नंबर 1 निवासी 32 वर्षीय वीरेंद्र गुरुंग, उसी स्थान के 55 वर्षीय ब्रह्मदेव गुरुंग, 50 वर्षीय टेक बहादुर गुरुंग, 28 वर्षीय नीसू गुरुंग और 55 वर्षीय चंद्र बहादुर गुरुंग शामिल है। यह जानकारी जिला पुलिस कार्यालय सुनसरी के एसपी चंद्र खड़का ने दी। पुलिस के अनुसार घायलों का उपचार विराटनगर स्थित नर्सिंग होम में चल रहा है। झापा की कनकाई नगरपालिका 3 नए बस्ती स्थित पूर्व पश्चिम लोकमार्ग पर आज सुबह हुई सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि अन्य 11 लोग घायल हो गए हैं। बिरता मोड़ से माईधार की ओर जा रहा एक मालवाहक वाहन और माईधार से बिरता मोड़ की ओर आ रही एक बस आपस में टकरा गई। इस हादसे में भद्रपुर नगरपालिका 8 की 40 वर्षीय सुषमा राजवंशी और उनके 18 महीने के बेटे आरुत राजवंशी की मृत्यु हो गई। यह जानकारी जिला पुलिस कार्यालय के डीएसपी खगेंद्र बहादुर खड़का ने दी। पुलिस के अनुसार घायलों 11 लोगों को उपचार बिरता सिटी और बीएनसी अस्पताल में चल रहा है तथा घायलों में से कुछ की हालात गंभीर बताई गई है। प्रहरी ने वैदेशिक रोजगारी के लिए विभिन्न देश भेज देंगे कहकर 28,70,000 रूपये ठगने के अभियोग में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार होने वालों में तापले जुंग की सिदिंगवा गांवपालिका वार्ड नंबर 5 के 37 वर्षीय सुनीता इधिंगवो लिंबू, रुकुम पश्चिम मुसीकोट नगर पालिका 10 के 30 वर्षीय अभिषेक कराला, अर्घाखाची की माला रानी गांव पालिका 1 के 46 वर्षीय चेत नारायण आचार्य, कावरे प्लांचौ की चौरी देउराली गांव पालिका 7 के 49 वर्षीय रेशमलाल लामा तामांग और काठमांडू महानगर पालिका 17 की 42 वर्षीय नीलिमा श्रेष्ठ शामिल है। ये जानकारी काठमांडू घाटी अपराध अनुसंधान कार्यालय के प्रवक्ता एवं एसपी काजी कुमार आचार्य ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत सरकार ने ईरान में बढ़ते तनाव और सुरक्षा चिंताओं के कारण भारतीय नागरिकों को देश छोड़ने की सलाह दी है। भारत सरकार ने आज सुबह 15 जनवरी को अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने के लिए एडवाइजरी जारी की है। ईरान में भारी तनाव के बीच सुरक्षा चिंताओं को मद्देनजर रखते हुए वहां से भारतीय नागरिकों को निकालने की योजना बनाई है। तेहरान से नई दिल्ली के लिए पहली फ्लाइट कल सुबह 16 जनवरी को रवाना होगी। जम्मू और कश्मीर छात्र संघ ने एक बयान जारी कर कहा, सभी छात्रों को रजिस्ट्रेशन हो चुका है। भारतीय दूतावास ने उनके व्यक्तिगत विवरण और पासपोर्ट एकत्र कर लिए हैं और पहले बैच को सुबह 8 बजे तक तैयार रहने के लिए कहा गया है। गुलिस्तान विश्वविद्यालय और शहीद बेहोश्ती चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय और तेहरान चिकित्सा विश्वविद्यालय के कुछ छात्र कल भारत आने वाली पहली फ्लाइट में शामिल होंगे। ईरान से लौटने वाले छात्र की अंतिम सूची आज रात साझा की जाएगी। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 16.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वर्तमान परिस्थिति में संयमित और एकताबद्ध होकर आगे बढ़ना आवश्यक है, प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने दी जोर। नेपाली कांग्रेस के दोनों पक्ष आधिकारिकता के लिए पहुंचे निर्वाचन आयोग में। सुनसरी के घोकरा स्थित हुलाकी राजमार्ग में ट्रक दुर्घटनाग्रस्त, 5 लोगों की हुई मौत। और ईरान में बिगड़े हालात, भारतीयों की होगी वतन वापसी, भारत सरकार ने जारी की एडवाइजरी। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।